नंदिनी इप्सिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, सच में इशू, क्या ये बिल्कुल सही कह रही है? तो सच में इस समय अभिमन्यु और अपने ससुराल वालों को लेकर बेचैन हो रही है? इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए देखा, फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को भी लेकर बेचैन नहीं है। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें भी तो अभी रेडी होने में टाइम लगेगा। नंदिनी ने थोड़ा जोर देते हुए पूछा, नहीं तो मुझे बता पहले, तो सच में जीजू को लेकर नर्वस हो रही है क्या? वो तेरे साथ फर्स्ट नाइट में क्या क्या करेंगे? इस पर इप्सिता ने गुस्से से कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं स्वयं हम तुम्हारी शिकायत मम्मी से कर देंगे। इप्सिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है, अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं, तू मुझे यहाँ से भागना चाहती है जिससे कि तेरा अच्छा मेकअप हो जाए और मैं कहीं ऐसा ब्राइडल मेकअप करना ना सीख जाऊँ। नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। इप्सिता कुछ नहीं बोली, उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो नंदिनी को बहुत अच्छे से जानती थी। इप्सिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है, अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं, तू मुझे यहाँ से भागना चाहती है जिससे कि तेरा अच्छा मेकअप हो जाए और मैं कहीं ऐसा ब्राइडल मेकअप करना ना सीख जाऊँ। इतना बोलकर नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा दिखाया। वो अपने कपड़े उठाते हुए बोली, ठीक है बेटा, याद रखूंगी मैं तुम्हें, जा रही हूँ मैं रेडी होने, और देखना, तुमसे पहले मैं खुद ही अपना मेकअप करके रेडी हो जाऊंगी। इप्सिता नंदिनी को देखकर बोली, हाँ ठीक है, जाओ, कम से कम यहाँ खड़ी होकर मेरा दिमाग तो नहीं खराब करोगी तुम। एक तो पहले ही हम परेशान हैं, ऊपर से तुम ये सारी बातें बोलकर मुझे परेशान कर रही हो। इप्सिता ने ये बात थोड़ा सीरियस होकर बोली। तभी नंदिनी रुकी और उसने इप्सिता के सीरियस फेस को देखते हुए कहा, क्यों, किस बात को लेकर परेशान हो, तुम बताओ मुझे। इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखकर मन में कहा, क्या करूं, नंदिनी को बताऊं क्या अभिमन्यु के बारे में? सोच ही रही थी कि तभी नंदिनी ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अब तुम कुछ बोलोगी या नहीं? नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अरे तुम बेकार में परेशान मत हो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मैं तब तक अपना आराम से मेकअप करवा लेती हूँ। इतना बोलकर इप्सिता चुपचाप होकर बैठ गई। नंदिनी को एक पल के लिए उस पर शक हुआ, लेकिन फिर वो वहां से रेडी होने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में वो अपने लहंगे को पहनकर बाहर आई और वहीं शीशे के सामने खड़े होकर वो अपना मेकअप करने लगी। काफी देर बाद वो शीशे के सामने से हटी। उसने इप्सिता और मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, आप इशू को अच्छे से रेडी कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक मैं नीचे जाकर थोड़ी सी तैयारी देख लेती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी रूम से बाहर चली गई। उसने देखा नीचे काफी सारे मेहमान आ चुके थे, वहीं मासा और अर्पिता के साथ साथ इप्सिता के ससुराल वाले सब आ गए थे। नंदिनी जैसे ही नीचे उतर कर आई, इप्सिता की मम्मी नंदिनी के पास आकर बोली, तुम रेडी होकर अकेले ही यहाँ आ गई हो, इप्सिता कहाँ है? तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? इतना बड़ा दिन है, वो नर्वस हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या सोचेगी। नंदिनी ने उन्हें पहली बार इप्सिता की फिक्र करते हुए देखकर कहा, अरे आंकी, वो रेडी हो रही है, मैंने सोचा जब तक इशू को टाइम लग रहा है मैं थोड़ा आपका हाथ बटा दूं, बताइए मुझे क्या करना है। इप्सिता की मम्मी ने कहा, नहीं, यहाँ पर सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ और जैसे ही इप्सिता का मेकअप फिनिश होता है तुम उसे लेकर सीधे नीचे आ जाना, वैसे भी मुहूर्त का टाइम होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि जरा सी भी देर हो। नंदिनी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वापस रूम की तरफ जाने लगी। तभी सामने से उदय आया, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया और वो नंदिनी से टकरा गया। तभी उसकी नजर नंदिनी के लहंगे और उसके चेहरे पर गई। उदय वहीं अपनी जगह पर जम गया, वो अपनी नजरें नंदिनी पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी उसने धीमी आवाज में पूछा, नंदिनी, आपको लगी तो नहीं, आप ठीक तो है ना? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। नंदिनी इतना बोलकर अपने लहंगे के दुपट्टे को ठीक करने लगी। उदय नंदिनी के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि नंदिनी इस टाइम फुल मेकअप में थी, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल करके काफी सारे हेयर एक्सेसरीज लगाए थे और लहंगे से मैचिंग लाइट ब्लू कलर का लेंस भी लगाया हुआ था, फेक आईलैशेस भी लगाए थे और मेकअप बहुत ही सुंदर किया था। डार्क कलर की लिपस्टिक भी आज उसने पहली बार यहाँ पर लगाई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उदय उसकी तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था, वो नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसके माथे पर लगा वो बड़ा सा मांग टीका और उसके कानों के झुमके, उसके चेहरे से लेकर उसके पाँव की जूती तक हर एक चीज की डिटेल उदय देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नंदिनी इंडियन ड्रेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। उदय अपने मन में नंदिनी को लेकर तारीफ करता जा रहा था, तभी नंदिनी की नजर उदय पर गई। उसने हैरानी से उदय की तरफ देखा, उदय बस चुपचाप उसे देख रहा था। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, वो एक कदम उदय के करीब आकर बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उदय ने नंदिनी की आवाज सुनी तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो आप पर ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नंदिनी उदय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि उदय की इस बात पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। हालांकि इससे पहले जब कभी भी कोई नंदिनी की तारीफ करता या उसे कॉम्प्लीमेंट देता था तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती थी और तुरंत ही उसे थैंक्स बोलती थी। पर उदय ने जब अभी उसकी तारीफ की तो नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो उदय की तरफ से अपनी नजरें हटाकर दो कदम पीछे हटी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हम इशू के पास जा रहे हैं। उदय नंदिनी को इस तरह घबराते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, हम भी चलते हैं। नंदिनी ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, हम उसे ले आएंगे। और वैसे भी अभी शायद इशू रेडी नहीं हुई है और उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक बाकी का काम देख लीजिए। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना लहंगा दोनों हाथों से पकड़ा और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए इप्सिता के रूम में आ गई। उदय उसे इस तरह भागते देखकर अपने मन में बोला, कहीं हमने नंदिनी की तारीफ करके उन्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हम भी बिल्कुल टफर हैं, पता नहीं क्यों हमने इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ बोल दिया, अब वो पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। उदय नंदिनी के पीछे जा रहा था तभी वो रुका और उसने कहा, हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इशू की विदाई के बाद उनसे सॉरी बोल देंगे और उन्हें बता देंगे कि हम उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते थे। उदय इतना बोलकर नीचे आया। उसने देखा वहां अभिमन्यु की मासा और अर्पिता के साथ साथ बाकी सब लोग मौजूद थे। उदय उन सबकी खातिर में लग गया। वहीं नंदिनी इप्सिता के पास गई। उसने देखा वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इप्सिता ने राजवंशी परिवार की तरफ से आया हुआ बहुत ही हैवी रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर काफी हैवी गोल्डन वर्क था और उसके साथ दो दुपट्टे थे, एक रेड और एक गोल्डन कलर की नेट का। रेड वाले लहंगे के दुपट्टे से उसे घूंघट करना था और गोल्डन वाला दुपट्टा उसे स्टाइल करना था, बस वही बाकी रह गया था, बाकी वो पूरी तैयार थी।
नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है तू, कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। नंदिनी ने इतना बोलकर इप्सिता को साइड हक कर लिया, उसके माथे का पट्टी को ठीक किया, फिर उसे देखते हुए बोली, वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही मेकअप किया है, वेल डन। बोलकर नंदिनी ने वहां पर रखे दुपट्टे को उठाया, फिर वो उसे इप्सिता के लहंगे में टक करने लगी। फिर एक दूसरा दुपट्टा उठाकर उसने उसे इप्सिता की कमर से डाला और उस दुपट्टे का थोड़ा सा घूंघट किया। फिर उसने कहा, चलो अब हम नीचे चलते हैं, वहां सब काफी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने उससे पूछा, अभिमन्यु आ गए क्या? नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से ये बात सुनी उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अभी से ही जीजू की याद आ रही है? अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, वैसे भी अब तो तू उनके साथ ही रहने वाली है, फिर शादी के बाद तुम्हें उनके साथ ही राजवंशी महल जाना है। इप्सिता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिनी प्लीज, हम मजाक के मूड में नहीं हैं, तुम्हें नहीं पता लेकिन हमें सच में बहुत बेचैनी हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दो दिनों से हमारी अभिमन्यु से कोई बात ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों हमारे दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, अभिमन्यु ऐसा कभी नहीं करते, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, तो बेकार में परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, समझी, तुम रिलैक्स रहो, अगर इतनी टेंस रहोगी तो मेकअप डल लगने लगेगा, जस्ट काम डाउन, ओके? वैसे भी शादी के टाइम में वो ज्यादा बिजी हो गए होंगे इसलिए टाइम नहीं मिला होगा तुमसे बात करने का, तुम ना अपनी ये ओवरथिंक करने की आदत को छोड़ दो। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता थोड़ी सी रिलैक्स हुई। उसने अपने मन में कहा, आई थिंक नंदिनी ठीक कह रही है, हो सकता है अभिमन्यु शादी के कामों में बिजी हो, वैसे भी थोड़ी ही देर की तो बात है, उसके बाद तो हम उनसे मिल ही लेंगे, इस बार हम उन्हें अच्छे से डांटेंगे, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सच में उन्होंने हमें हमारी शादी वाले दिन इतना ज्यादा परेशान कर दिया। इप्सिता सोच ही रही थी तभी नंदिनी ने कहा, अब क्या सोचने लगी तुम, चलो चलते हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर रूम से बाहर निकलने लगी। इप्सिता को अपने हैवी लहंगे के साथ चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची सबकी नजरें इप्सिता पर ही टिक गईं। इप्सिता ने आधा घूंघट ले रखा था जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थीं। वो एकदम किसी महारानी की तरह लग रही थी, उसके जेवर कपड़े सब एकदम राजघराने के होने की गवाही दे रहे थे, सब कुछ काफी हैवी था जिसकी वजह से उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नंदिनी ने उसके हाथों को थामा हुआ था और बड़े ही ध्यान से संभालकर उसे नीचे लेकर आ रही थी। जैसे ही उदय की नजर इप्सिता पर गई वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ा और उसने दूसरे हाथ से इप्सिता को पकड़ लिया। जैसे ही अपशिता सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में बने बड़े से मंडप के सामने आकर रुकी, मासा और अर्पिता दोनों अपशिता के पास आए। अपशिता की मम्मी भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। क्रमशः